أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
وبعد ذلك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو ہمیں فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جو آپ سے نہ ڈرے، ایسے نفس سے جو بھلائی سے سیر نہ ہو، اور ایسی دعوت سے جو قبول نہ ہو. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اے اللہ، اس کام کو آسان کیجئے گا اور اسے مشکل نہ کیجئے گا، اور خیریت کے ساتھ اس کی تکمیل کیجیے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. کیسا رہا آپ کا پورا ویک؟ الحمدللہ. بس دن تو گزر رہے ہیں، ہر بڑھتا دن مجھے اور آپ کو اپنے انجام سے بہت قریب کر رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہر بڑھتے دن کے ساتھ میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق کتنا بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے جو صرف زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ اللہ ہمیں ایسا بنائے جو زندگی جی رہے ہیں. تو آپ لوگ زندگی کو جئیں، زندگی کو گزارے نہیں. آپ کا وجود اس کائنات کا پہلا اور آخری وجود ہے. آپ سے پہلے ایسا انسان کبھی نہیں آیا، اور آپ سے بعد تا قیامت ایسا کوئی شخص نہیں آئے گا. تو اپنے آپ کو غموں کے، پریشانیوں کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مت خود کو انگیجڈ کریں، خود کو مت روندیں، اپنی اہمیت پہچانیں. اللہ سے دعا کیا کریں، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ اللہ دنیا کو میرا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنا. اصل غم تو آخرت کا غم ہے، اور اصل مقصد تو جنت کی طلب ہے. بس اس کے لیے بھاگیں، اس کے لیے دوڑنا ہے ہم نے، اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. اور یہی ایک کڑی ہے تدبر کی، جو آپ جنت کے حصول کے لیے طے کر رہے ہیں یا جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں. اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گی. نمبر ون، کہ مجھے بہت سارے ریکویسٹ آ رہی ہیں آن لائن اسٹوڈنٹس کی طرف سے، کہ لیکچر فرائیڈے کے بجائے آپ کسی اور دن بھیج دیا کریں، تاکہ ہم زیادہ ٹائم یعنی ہمیں مل جائے، ہم سن لیں. تو اس کے ریزنز تو میں بتا چکی ہوں کہ کس وجہ سے فرائیڈے کو بھیجا جاتا ہے، لیکن आपका आराम और आपका मशवरा हमारी अवलीन तरजीह है। इंशाल्लाह आने वाले एक दो फ्राइडे के बाद लेक्चर में पहले भेज दिया करूँगी, लेकिन शर्त ये है कि आप फिर ज़रूर कंप्लीट करेंगे। और दूसरा जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ, एक बंदे की तरफ से नहीं, बहुत से लोगों की तरफ से, कि लेक्चर बहुत लंबा होता है। एंड आई वॉज शॉक्ड कि इससे भी कम होगा। आप क्या चाहते हैं? एक हफ्ते बाद एक घंटा ज्यादा लग रहा है हमें। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे कितने कितने घंटे गुजरते हैं। अपने आप को ऐसे मजालिस के साथ और अपने दिल को ऐसे मजालिस के साथ लगाइए, इंटरेस्ट पैदा करें, खुद को बदलें। इससे तो कम नहीं हो सकता। हाँ इंशाल्लाह इससे ज़्यादा ज़रूर होगा, क्योंकि अब आप बड़े होते जा रहे हैं, तो आने वाले वीक्स में आपकी ये जो तफसीर है, इनडेप्थ स्टडी है, ये 1.5 घंटे तक भी जाएगी। तो इसलिए बजाय इसके कि हम उसूलों को बदलें, हमने खुद को चेंज करना है। ये बात आपकी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, इसलिए आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। और एक घंटा कितना है? एक हफ्ते बाद एक घंटा है भाई, इसमें से हम कम कैसे करें? ठीक है, तो अपनी इस सोच पे नज़रसानी कीजिए और प्लीज़ इस तरीके की बातें कह के अपना वक्त भी ज़ाया ना कीजिए और दूसरों का भी वक्त ज़ाया ना कीजिए। और जो चीज़ मुश्किल लग रही है ना, उसके लिए अल्लाह से दुआ किया करें। नहीं सुना जा रहा, अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह आप आसानी पैदा करें। मैं हर आवाज़ सुन सकती हूँ, मैं ये आवाज़ क्यों नहीं सुन रही? मैं हर चीज़ पढ़ सकती हूँ, मैं ये क्यों नहीं पढ़ रही? मैं हर चीज़ टाइप कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ, मैं ये क्यों नहीं लिख पा रही? या अल्लाह कहाँ प्रॉब्लम है? आप मेरी मदद करें, आप मेरे लिए आसानी करें, फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आई होप कि अब आप ज़रूर समझेंगे। और कोर्स थोड़ा सा रह गया है, बहुत से लोग इस वजह से, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, ऑन कैंपस स्टूडेंट तो माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये सब के लिए है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी सुनिए और ऑन कैंपस स्टूडेंट्स आप भी सुने। बहुत से लोग इसलिए भी कोर्स लेफ्ट कर जाते हैं, उन्हें लगता है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। कुरान इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। कुरान से आसान तो कोई किताब है ही नहीं जिसमें मेरी और आपकी बात हो रही है। हम हर उस मजलिस में कितने शौक से बैठते हैं जहां हमारी बात होती है। हम गुजर रहे होंगे, किसी ने हमारा नाम लिया होगा, हम खड़े हो जाते हैं, मेरी बात हो रही है, क्या मेरी बातें कर रहे हैं? तो इसमें भी मेरी और आपकी बात हो रही है, मेरी और आपके भले की बात है। इकबाल कहा करते थे कि तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इसमें सरासर आपका और मेरा फायदा है। हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो क्या नुकसान होगा? अल्लाह और लोगों को ले आएगा, लेकिन हमारा नुकसान जरूर होगा कि हम इससे महरूम हो जाएंगे। तो अपनी फलाह के लिए कुरान पढ़ें और अपनी इस्तकामत के लिए बहुत अल्लाह से दुआ करें। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से आप ग्रुप लेफ्ट कर रहे हैं, मसलन टाइम मैनेज नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो भागना, फरार होना, ये किसी मुश्किल का सलूशन है? मुझे बताइए, एक दो क्लासेस नहीं ली जिसकी वजह से अब आगे हम कैसे लें, हम कैसे कंटिन्यू करें? हमें शर्म आ रही है, ये सब शैतान आपके माइंड में डालता है। छोटे से नुकसान को बर्दाश्त कर लें, बड़े नुकसान का सौदा ना करें प्लीज। और 6 मंथ्स हैं, वक्त गुजर जाएगा लेकिन रवैये हमेशा सब्त हो जाएंगे। तो अपनी कदर पहचानिए, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, इस कदर को भी पहचानिए और अपने आप को खुद ही इस खूबसूरत मकाम से मत गिराएं। अपने इंचार्जेस से बात करें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस लिए हैं? इसीलिए कि वो इंशाल्लाह सॉल्व आउट करेंगे। और जितने मसाइल होते हैं वो डिस्कशन से सॉल्व किए जाते हैं। भाग जाना, छोड़ देना, ये तो कोई हल नहीं है। आप डिस्कस करें, इंशाल्लाह सॉल्व होंगे मसाइल। किसी वीक कोई मसला हुआ, आपने क्लास नहीं ली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ग्रुप लेफ्ट करें। इसका मतलब ये है कि आप बाद में नोट्स कंप्लीट करें, आप अपना उजर बताएं। तो इन बातों को काइंडली अपने माइंड में रखिएगा और आइंदा इस तरीके की शिकायत का मौका बिल्कुल भी ना दीजिएगा। चलें जी, अब आते हैं अपने लेसन की तरफ। दोबारा से हम सूरह फलक की तिलावत सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह आज जिन दो आयात पे हम तदब्बुर करने जा रहे हैं उनको कंटिन्यू करते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد।
हम तीन आयात की इनडेप्थ स्टडी कर चुके थे, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे, व मिन शर्रि और शर से अन्नफ़ासाती फूंकने वालियों के, फिल उक़द घेरों में, व मिन शर्रि और शर से हासिदिन हासिद के, इदा जब हसदा वो हसद करे। बेसिकली इन दो आयात में जादू और हसद यानी नजर बद इनके बारे में डिस्कशन हुई है। तो बजाय इसके कि इन दो आयात के इनडेप्थ स्टडी करें, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जादू के बारे में और हसद के बारे में। पहले हम देखते हैं जादू, उसकी हकीकत और उसका इलाज। याद रखिएगा कि जादू उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, जबकि अरबी में इसके लिए सहर का लफ्ज़ आता है। और सहर का लुग़वी माना होता है धोखा देना, हीला करना, हकीकत से फेरना, बातिल को हक की सूरत में जाहिर करना, या कोई चीज़ किसी के सामने इस तरह पेश करना कि देखने वाले हैरान और परेशान रह जाएं। ठीक है। और जादू में शयातीन, अरवाह खबीसा यानी नापाक रूहों और सितारों से मदद ली जाती है। ये एक नफ्सियाती असर है जो नफ्स से गुजर कर जिस्म को भी इसी तरह मुतासर कर सकता है जिस तरह कुछ असरात जिस्म के साथ साथ नफ्स को भी मुतासर करते हैं। मसलन आप देखें, खौफ एक नफ्सियाती चीज़ है ना, मगर इसका असर जिस्म पर भी होता है कि हमारे फौरन से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बदन में कपकपाहट सितारी हो जाती है। तो जादू से हकीकत तब्दील नहीं होती, मगर इंसान का नफ्स और हवास इससे मुतासिर होकर ये महसूस करने लगते हैं कि हकीकत तब्दील हो गई है। और इमाम ज़हरी रहिमहुल्ला के नज़दीक जादू एक ऐसा अमल है जो शैतान जिन की मदद से किया जाता है। और इमाम राज़ी के नज़दीक जादू का ताल्लुक हर उस काम के साथ होता है जिसका सबब पोशीदा हो और उसमें धोखादेही नुमाया हो। क़ुरान पाक में बहुत से मकामात पर जादू का लफ्ज़ आया है, जैसे कि सूरह बकरा आयत नंबर 102 में आया है,
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون
اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور اس کی پیروی کرتے جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں لہذا تم کفر نہ کرو چنانچہ لوگ ان دونوں سے جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور لوگ وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہ دیتا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی کاش وہ جان لیتے تو یہ آیت دلیل ہے کہ جادو شیطانی کام ہے اور کفر ہے اور سیکھنے والا کافر ہے اور ایک اور بات جو یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جادو خود بخود کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطہٰ آیہ نمبر 69 میں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى اور جادوگر کہیں سے بھی آ جائیں کامیاب نہیں ہو سکتا تو چنانچہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ جادو میں کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت موجود ہے جس طرح بیماریوں کے مختلف اسباب ہوتے ہیں اسی طرح جادو بھی کسی بیماری یا تکلیف کا ایک سبب ہے مثلا اگر کہیں وائرس پھیلا ہو تو سب اس سے متاثر نہیں ہوتے وہی بیمار ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کا حکم ہو اسی طرح جادو بھی اللہ کے اذن کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ساتھ بسا اوقات جادو سے ہونے والی بیماری تکلیف اور دیگر مصائب بلندی یا درجات کا بھی سبب بنتے ہیں نیز اللہ کی یاد سے دوری اور کچھ انسانی کمزوریاں بھی جادو کے اثر انداز ہونے کی وجہ بنتی ہیں مثلا جس طرح میگنیٹ صرف آئرن پر اثر انداز ہوتا ہے نا اسی طرح جادو یا لوگوں کے خیالات نگاہیں کلمات اور الفاظ انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں عقیدہ کی کمزوری توکل کی کمی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو جو طہارت سے لاپرواہی نماز میں سستی اور ذکر الہی اور مسنون دعاؤں سے غفلت برتتے ہیں تاہم کبھی نیک صالح لوگ اور رسول اللہ بھی جادو سے متاثر ہو جاتے ہیں ٹھیک جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ پر جادو کیسے اثر انداز ہوا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کا یہاں تک اثر ہوا کہ بعض اوقات آپ کو خیال پیدا ہوتا تھا کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے لیکن حقیقت میں نہیں کیا ہوتا تھا جب یہ حالت ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور پھر مجھ سے یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح مخاطب ہوئے کیا تم کو معلوم ہے کہ جس بات کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی اس بارے میں مجھ کو قطعی علم عنایت ہوا ہے سیدہ عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیسے آپ نے فرمایا میرے پاس خواب یا مکاشفہ کی حالت میں دو آدمی آئے ان میں سے ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کے پاس اس کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا اس شخص کو کیا بیماری ہے دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا پہلے نے پھر پوچھا کس نے اس پر جادو کیا دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم نے پہلے نے دریافت کیا کس چیز کے ذریعے سے اس نے کہا کنگھی کے گرائے ہوئے بالوں اور نر کھجور کے گھابے کے غلاف کے ذریعے سے پہلے نے سوال کیا وہ جادو کہاں ہے اس نے کہا زروان کے کنویں میں جو بنی زریق کے قبیلے میں ہے یہ منظر دکھائی دینے کے بعد آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور واپس آ کر سیدہ عائشہ کے سامنے اس طرح بیان فرمایا کہ اس کا پانی اس قدر سرخ تھا گویا اس میں مہندی کے پتے بھگوئے گئے ہیں، اور اس کے ارد گرد کھجور کے درخت شیطانوں کے سر معلوم ہوتے تھے، یعنی بدصورت اور بدنما ہونے کی وجہ سے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو آپ نے اس کو نکالا نہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھ کو اللہ نے شفا بخشی تو میں نے مناسب خیال نہیں کیا کہ لوگوں میں فتنہ اور فساد پیدا کروں، اس کے بعد اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ اور یہ روایت ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے، حدیث نمبر 3248 حدیث نمبر ہے، اور یہی حدیث ہمیں صحیح مسلم میں بھی ملتی ہے، وہاں حدیث نمبر ہے 2189۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جادو برحق ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں جادو ہوتا کیا ہے، کس کو کہتے ہیں جادو؟ تو جادو ایسے الفاظ اور دم کا نام ہے جن کو لکھ کر یا پڑھ کر ہوا یا گھروں میں پھونکنے سے مطلوبہ شخص کے بدن، دل، عقل یا اس کی ڈیلی لائف پر نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، یہ ہے جادو۔ اور جادو شرک کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنات کی عبادت کی جاتی ہے اور ان سے مدد لی جاتی ہے۔ جادوگر اللہ تعالیٰ کے بجائے جنات کی عبادت کرتا ہے اور ان کے وسیلے سے ایسے افعال کرتا ہے جو لوگوں کے لیے بہت ڈینجرس ہوتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جادو کے کتنی ٹائپس ہیں۔ یاد رکھیے گا، جادو کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک ہے عام جادو اور ایک ہے کالا جادو۔ عام جادو تو یہ تعویذ کے ذریعے یا جنتر منتر پڑھ کر کیا جاتا ہے، لیکن کالا جادو، اس میں نجاست سے آیات قرآنی لکھی جاتی ہیں یا آیات قرآنی کو الٹا لکھا جاتا ہے اور دیگر حرام کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک سخت قسم کا جادو ہے۔ اللہم احفظنا من ذالک، اللہ تعالی ہمیں ایسے افعال سے بھی بچائیں اور ایسے افعال کے نقصانات سے بھی بچائیں۔ بہرحال جادو کی بہت سی اور ٹائپس ہیں، یعنی مین ٹائپس تو دو ہیں، عام جادو یا کالا جادو، لیکن ان دونوں اقسام کے تحت کون کون سے جادو کروائے جاتے ہیں یہ آپ یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلا جو جادو ہوتا ہے وہ ہے سحر تفریق، یعنی قریبی اور کاروباری رشتوں میں جدائی ڈالنے والا، مثلا ہسبینڈ وائف میں سب سے بڑا جادو، کسی دو پسندیدہ اشخاص کے درمیان۔ پھر اس کے بعد سحر محبت، یعنی کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے جو جادو کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح سحر تخیل، وہم میں ڈالنے والا جادو ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو وہم ہوتا ہے۔ اب کائنڈلی آپ ایک ایج پہ نہ جائیے گا کہ ہم پہ تو ہے ہی جادو، وہ میں انشاءاللہ آگے ڈسکس کروں گی۔ اوکے، اس کے علاوہ سحر جنون، یعنی دماغ کو مفلوج کرنے والا، سحر خمول، کاہلی اور سستی میں مبتلا کرنے والا، سحر ہواطف، یعنی چیخ و پکار میں مبتلا کرنے والا، جس میں انسان پہ کچھ طاری ہو جاتا ہے وہ چیخیں مارتا ہے، اور سحر امراض، یعنی مختلف بیماریوں میں مبتلا کرنے والا، اور سحر استحاضہ، یعنی استحاضہ کی بیماری میں مبتلا کرنے والا۔ تو یہ کچھ جادو ہوتے ہیں جو کروائے جاتے ہیں۔ جادو کے ریزنز کیا ہوتی ہیں یہ تو مجھے اور آپ سب کو پتا ہوگا کہ سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ ہے دشمنی یا حسد۔ یعنی جب کسی سے دشمنی ہو اور اتنی سویر ہو کہ وہ حسد سے گزر کر ایک بڑے لیول پر آ جائے اور انسان جادو کروانے لگتا ہے، اور انسانی تعلقات میں خرابی، جب انسانی تعلقات ٹھیک نہ ہوں تو ہی دشمنی اس لیول تک پہنچتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہیں جادو کی دو بڑی وجوہات۔ اس کے علاوہ جادو کے چند سمپٹمز ہوتے ہیں، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جادو کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، نمبر 1، بغیر اسباب کے مزاج میں بتدریج تبدیلی۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ غور سے سنیں پلیز۔ مثلا نارمل روٹین میں آپ بہت فریش ہوتے ہیں، لیکن سستی آ گئی ہے، گھبراہٹ، خاموشی اور تنہائی کی عادت، इसी तरह जहनी इंतशार की कैफियत जो दिन ब दिन बढ़ती जाए, बेचैनी की कैफियत लेकिन जगह बदलते ही अफाका हो जाए, मसलन अपने घर में इंसान रहे तो उसका दिल ना लगे और बाहर जाए तो दिल लगना शुरू हो जाए। अब काइंडली यंग गर्ल्स भी माशा अल्लाह सुन रही हैं, तो आज के दौर की जनरेशन के वैसे भी घर दिल नहीं लगता, आउटिंग के लिए निकलते हैं तो दिल लगता है, तो अब काइंडली वो ये ना समझें कि हमारा तो घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता तो हम पर भी खुदा ना खास्ता जादू हो गया है, नॉट एट ऑल। ओके, मिजाज में हद से ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाना, किसी काम में दिल ना लगना, नमाज रोज़ा और दीगर इबादात से दिल उकता जाना, जिस्म के किसी हिस्से में विदाउट एनी रीज़न पेन होते रहना, बग़ैर किसी बीमारी और ज़ाहरी अलामत के सर का चकराना और बाज़ औक़ात गर्दन का टेढ़ा हो जाना या डरावने ख्वाब आना और जब इंसान ठीक भी हो तो चीखों पुकार की आवाज़ें सुनना या घर वालों से और रिश्तेदारों से बग़ैर किसी सबब के ताल्लुकात ख़राब होना। इसके अलावा जो गैर मामूली वाक़यात पेश आते हैं उनमें खून के छींटे गिरना, तयशुदा कपड़ों को कटा हुआ पाना, हस्बैंड और वाइफ का एक दूसरे में कशिश महसूस ना करना, और कोई भी दो रिलेशन है मसलन सास बहू है, देवरानी जेठानी है, दो फ्रेंड्स हैं, कोई एम्प्लॉयर और बॉस है, कोई भी दो तरह के रिलेशन, उनमें बग़ैर किसी रीज़न के शकूक व शुभात का पैदा होना, इसी तरह खाविंद या बीवी को दूसरे फरीक का बदसूरत दिखाई देना और शादीशुदा को अपने रफ़ीक हयात के पास जाने से बेरुखपती का होना, तो ये सारे साइंस होते हैं जादू के। अब हम देखते हैं कि जादू से बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है तो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट बताऊँगी, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखें, जिस तरह बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं, इसी तरह जादू से बचाव के लिए भी एहतियाती और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। जादू बरहक है, इसका असर बरहक है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि इंसान डरता रहे। डरने के बजाय इंसान प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स को अपनाए। वो कहा जाता है ना कि परहेज इलाज से बेहतर है, तो इसी तरह क्या कुछ करना चाहिए कि इंसान जादू से बच पाए। सबसे पहला जो टूल है वो है तहारत और वुजू का एहतमाम। याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है जादू के असर से बचने के लिए कि इंसान अपने आप को साफ रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम में से हर एक आदमी की गर्दन पर जब वो सो जाता है 3 घिरें लगा देता है, यानी 3 नॉट्स लगाता है। हर एक घिरा पर फूंक मारता है कि अभी रात लंबी है। जब कोई बेदार होता है और अल्लाह का जिक्र करता है तो एक घिरा खुल जाती है, जब वुजू करता है तो दूसरी घिरा खुल जाती है, और जब नमाज पढ़ लेता है तो सारी घिरें खुल जाती हैं। फिर वो सुबह हशाश पशाश और खुश मिजाज उठता है, वरना उसकी सुबह नफ्स की खबासत और सुस्ती के साथ होती है। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 1855। फिर इसी तरह इबादात की पाबंदी, याद रखिएगा, फ़र्ज इबादात पाबंदी के साथ अदा करने से इंसान शैतान से भी महफूज रहता है और शैतान की शर से भी महफूज रहता है। फिर इसी तरह कसरत से अल्लाह का जिक्र करना। सुनन तिर्मिज़ी में एक रिवायत मिलती है, हदीस नंबर है 2863। सैयदना हारिस अशारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहया बिन ज़करिया अलैहि सलाम ने बनी इसराइल से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म देता हूँ। इसकी मिसाल उस आदमी जैसी है जिसके पीछे दुश्मन तेजी से निकल पड़े हों, यहाँ तक कि वो एक मजबूत किले में आ जाए और अपने आप को उनसे बचा ले। इसी तरह कोई बंदा अल्लाह के जिक्र के अलावा शैतान से खुद को नहीं बचा सकता। और कसरत से अज़कार, कितने ज्यादा अज़कार हैं, सुबह शाम के अज़कार, इनको तो लाजिम पकड़ लें। स्कॉलर्स कहते हैं कि आज के इस पुरफितन दौर में खाना पीना अहम नहीं है, लेकिन सुबह शाम के अज़कार बहुत अहम हैं। इसी तरह इस्तग़फ़ार को लाजिम करना। देखिए, जादू के पीछे जो असल रीजन होती है ना, वो दुश्मनी। तो दुश्मनी ऐसे नहीं बैठे बिठाई होती, कहीं ना कहीं हमारी भी मिस्टेक होती है कि अगला इंसान हमसे दुश्मनी करने लग जाता है। तो इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। सैयदना फ़ज़ाला बिन अबीद रदी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, बंदा जब तक अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता रहता है उस वक्त तक अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहता है। और मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर है 23953। फिर इसी तरह अपने घर को तस्वीर और पिक्चर से और ऐसे मुजस्मों से पाक करना जिनमें जो किसी जानदार के हों, ठीक है? क्योंकि आपको ये पता है, सही बुखारी की हदीस है 3224, कि फरिश्ते ऐसे घर में नहीं दाखिल होते जिसमें कोई तस्वीर हो। तो जब फरिश्ते नहीं दाखिल होंगे तो कौन दाखिल होगा? शैतान, उसका शर। फिर इसी तरह हराम कामों और हराम कमाई से बचना, क्योंकि शैतानी चालें वहाँ ज़्यादा कामयाब होती हैं जहाँ अल्लाह की नाफरमानी और हराम कामों का इर्तकाब किया जाए। मसलन सूदी कारोबार हो, रिश्वत, जुआ, गाना बजाना और इल्म नुजूम के जरिए माल कमाना, तो इन तरीक़ों से बचना चाहिए। फिर इसी तरह मसनून अजकार का एहतमाम करना मुख्तलिफ मवाक़े के मौके पर। मसलन आप किसी जगह पहुंची हैं तो आप ये दुआ पढ़ लें, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक। और इसकी फजीलत क्या है? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो किसी मंजिल पर पड़ाव डाले और ये दुआ पढ़ ले तो इस जगह से कूच करने तक कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं देगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर है 6878। फिर इसी तरह और बहुत से अज़कार हमें मिलते हैं। मसलन बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस्समाई व हुवस समीउल अलीम। फिर इसी तरह तहलील पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और इसकी क्या फजीलत है, कोई मुझे बताएगा? सही बुखारी में इसकी फजीलत का पता चलता है, हदीस नंबर है 6403। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा पढ़ेगा तो उसे 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। 100 नेकियां उसके अमाल नामा में लिख दी जाएंगी और 100 बुराइयां उससे मिटा दी जाएंगी। उस रोज ये दुआ शैतान से उसकी हिफाजत करती रहेगी हत्ता कि शाम हो जाए, और कोई शख्स इससे बेहतर अमल लेकर ना आएगा मगर जो इससे भी ज्यादा ये कलमा पढ़े। सुभान अल्लाह, कितने छोटे छोटे अज़कार हैं, उनकी कितनी फजीलत है। इसी तरह और बहुत से अज़कार हमें मिलते हैं। मसलन वॉशरूम में इंसान जाए तो दुआ पढ़ के जाए, घर से निकले तो दुआ पढ़ के निकले, घर एंटर हो तो दुआ पढ़े, खाना खाने से कबल, किसी के घर एंटर हो तो क्या दुआ पढ़े, गुस्से के वक्त अपने स्पाउस के साथ जब हो तो कौन सी दुआ पढ़े, मुसीबत तकलीफ के वक्त क्या पढ़े, बिस्तर पे जाते वक्त क्या पढ़े। लेकिन इन सब दुआओं को पढ़ने से कबल इल्म का होना ज़रूरी है और एक कॉन्शियस मुस्लिम बनना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हमारे अनकॉन्शियसनेस की वजह से ये सारी हलाकतें हम पर मुसल्लत होती हैं, तो ज़रूरी है कि इंसान ऐसी दुआओं को सीखे और अपनी लाइफ पर अप्लाई करे। तो इंशाल्लाह अगर इंसान अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करे, जिक्र अजकार की सूरत में, फ़राइज़ की अदायगी की सूरत में, इस्तग़फ़ार की सूरत में, रिश्तों को अच्छी तरह निभा कर इस सूरत में, तो इंसान जादू के असरात से बच सकता है। लेकिन अगर किसी पर जादू हो गया तो उसका इलाज क्या है? याद रखिएगा, जादू का इलाज मौजूद है। सही मुस्लिम की हदीस है 5741, और ये हदीस मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ली दा इन दवा फ़इदा उसीब दवा उद्दाई बरा बी इज़्निल्लाहि ताला। कितनी खूबसूरत हदीस है कि हर बीमारी के लिए दवा है, फिर जब किसी मरीज को सही तरीके पर बीमारी की दवा पहुंचती है तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो तंदुरुस्त हो जाता है। तो हर बीमारी के लिए दवा है। कोई ऐसी डिजीज जमीन पर नहीं है जिसकी दवा ना हो। तो सबसे पहले तो जादू का इलाज करने से पहले ये इत्मीनान कर लें कि वाकई जादू का ही असर है। ऐसा ना हो कि बस इंसान को वहम, और आजकल इंसान इस वहम का बहुत शिकार हो चुका है। या तो हम बहुत अफराद पे हैं, छोटी छोटी चीज को जादू का असर समझते हैं, मसलन खुद पढ़ने का दिल नहीं कर रहा और इंसान कहे नहीं नहीं ये तो मुझ पे जादू हो गया है, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। खुद घर में रहने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि बाहर के इतने आदी हो चुके हैं, तो इंसान इसको भी कहे कि ये जादू हो चुका है। तो इसलिए इतने अफराद पर ना जाए और इतनी तफरीद पर भी ना जाए। कुछ लोग कहते नहीं जादू की तो कोई हकीकत नहीं है, हम पे कौन जादू करवाएगा? जिसने रसूलुल्लाह पे करवाया क्या आज के दौर में वो नहीं करवा सकता? और आज तो बहुत शुरूर है, हमें नहीं पता। और ये सूरत अगर अल्लाह ने मुझे और आपको सिखाई है तो इसका मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं, हमें बचने की जरूरत है। हम फरिश्ते नहीं हैं कि सबके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत परफेक्ट हैं। तो इसलिए एक्सेप्ट करें कि जादू है, इसका असर होता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप चलते चलते बस आपका पांव थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप कहें नहीं नहीं ये तो जादू है, फिर परेशान और वावेला और पूरे खानदान को टिकटिकी पे चढ़ाए रखना, ये भी बहुत गलत बिहेवियर है। ठीक है, तो इलाज किससे करवाना चाहिए? हर पीर फकीर के पास मत जाएं। याद रखें ऐसे मालिज ढूंढें जो खुद दीन के अहकामात का पाबंद हो और अल्लाह का नाम और कलाम से इलाज करें, और दम अरबी जबान में हो या ऐसी जबान में हो जिसका माना समझ में आता हो। दम में शिरकी अल्फाज ना हो, जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस है 5732, कि उस दम में कोई हर्ज नहीं जिसमें शिरक ना हो। और इलाज करते हुए ये अकीदा रखना कि ये तो एक सबब है, असल शिफा अल्लाह के ही हाथ में है। और ऐसे मालिक से इलाज नहीं करवाना चाहिए जो कैसे तरीके से इलाज करे ये नहीं, मसलन मालिक मरीज से उसकी माँ का नाम पूछे या उसके कपड़ों में से कोई कपड़ा मंगवाए, कभी कोई जानवर तलब करे और उसे बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर ज़बह करे, उसका खून मरीज के जिस्म पर मले या जानवर को गैर आबाद जगह फेंकवा दे, ऐसा मंत्र पढ़े जो उसकी समझ में ना आए, मरीज को लटकाने या पीने के लिए ऐसा तावीज़ दे जिसमें मुरब्बा की शक्ल के डिब्बे बने हों और इन डिब्बों में चंद हरूफ या नंबर लिखे हों जो समझ में ना आ सकें, पकी हुई मिट्टी की प्लेट में ना समझ आने वाले चंद हरूफ लिख कर दे और इस बर्तन में पानी पीने का हुक्म दे, मरीज को ऐसा हुक्म दे कि वो लोगों से अलग थलग होकर एक मुकर्रर मुद्दत तक किसी ऐसे रूम में जाए जहाँ रोशनी ना पहुंचे। बेचारा आगे डिप्रेशन का शिकार होगा, उसके बाद अंधेरे में जाके उसकी हालत, अल्लाह रहम करे। फिर मसलन कुछ चीज़ें ज़मीन में दफन करने के लिए कहे और कुछ ऐसे कागज़ दे जिन्हें जलाकर उनको धोएं धोएं और फिर पता नहीं धूनी लेने को कहे, और मुख्तलिफ चीज़ों को कहे कि जला के इसका धुआं लें वगैरह वगैरह। ठीक है, और फिर इसी तरह मरीज़ को इलाज के लिए मुख्तलिफ चीज़ें, मसलन हिरन की कस्तूरी, शेर की चर्बी, उल्लू का खून, कच्चा गोश्त और इसी किस्म की महंगी तरीन अशिया लाने को कहे। तो ऐसे मालिज के पास नहीं जाना चाहिए। और गैर शरी तरीके से इलाज के बारे में क्या हुक्म आता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है जो फाल ले या उसके लिए फाल ली जाए, या जो काहिन बने या उसके लिए कहानत की जाए, या जो जादू करे या उसके लिए जादू किया जाए, और जो किसी काहिन के पास आया फिर उसकी बात की तस्दीक की तो उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद पर नाजिल की गई। सही तरगीब और तरहीब, और जुज नंबर 3 हदीस नंबर 3041। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि बेशक अल्लाह ने जो चीज़ें तुम पर हराम की हैं उनमें तुम्हारी शिफा नहीं रखी। और इसी तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो लोग हैं जो झाड़ फूंक ना करवाते हैं نہ فال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 6472. تو بہرحال انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے ہی اتنی احتیاطی تدابیر کرے کہ کوئی اس پر جادو کروائے تو اس پہ اثر ہی نہ ہو. لیکن اگر ہو گیا تو انسان غیر شرعی طریقے نہ اپنائے، شرعی طریقے کے ذریعے علاج کروائے. پھر اسی طرح احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے کٹے ہوئے ناخن یا بال کہیں دبا دے، ادھر ادھر نہ پھینکے. استعمال شدہ پرانے کپڑے اگر کسی کو دینے کے قابل ہیں تو دھو کر دیے جائیں ورنہ جلا دیے جائیں. اور اسی طرح عورتوں نے جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو اس وقت را میٹیریل پیڈ ان کو کچرے میں پھینکنے کے بجائے جلا دینے چاہیے. اسی طرح بچے کے پیدائش کے وقت نوزائیدہ کے ساتھ نکلنے والی تمام آلائشوں کو بھی ہو سکے تو خود مٹی میں دبا دینا چاہیے. اب ہم جلدی سے دیکھتے ہیں کہ طب نبوی میں اس کا کیا علاج ہے. نمبر 1، حجامہ یعنی کپنگ کروانا. جادو کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں مسلسل درد رہتا ہو تو حجامہ کروا کے فاسد خون نکلوا دیا جائے. اور کپنگ تو ویسے بھی بہت شفا بخش کام ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے قمری ماہ کی 17، 19، 21 تاریخوں کو حجامہ کروایا اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی. سنن ابی داؤد 3861. تو آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جو مسلسل آپ کو پریشان کیے جا رہی ہے تو آپ ایک دفعہ کپنگ کروا کے دیکھیں. پھر اسی طرح شہد میں شفا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، حجامہ کروانے میں، یا شہد پینے میں، یا آگ سے داغنے میں. اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5681. کیا ہم سب شہد یوز کرتے ہیں؟ ہر طرح کی فضول اور ہارمفل ڈرنک ایزیلی پی لیں گے، لیکن شہد کون استعمال کرتا ہے؟ سچ سچ بتائیے، کیا ہماری لائف میں شہد شامل ہے؟ نہیں. جب مصنون غذائیں ہماری زندگی میں شامل نہیں ہوں گی تو کس طرح ہماری زندگی میں پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے؟ تو خدا را شہد کو اپنی زندگی میں لائیں، خالص شہد کہیں سے لے لیں اور وہ کتنا عرصہ چل جاتا ہے. صبح اٹھ کے تھوڑا سا چاٹ لیں، شہد میں ہر بیماری کی شفا ہے. پھر اسی طرح اجوا کھجور کھانا، کھجور میں شفا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھائے گا اس روز اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو. صحیح بخاری حدیث نمبر 5769. لیکن ہم نے تو کھجوریں صرف رمضان میں کھانی ہوتی ہیں، افطاری کے وقت. پھر اسی طرح بلیک سیڈز، کلونجی. رسول اللہ نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5688، کہ سیاہ دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. یعنی بلیک سیڈز میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ صبح ایک سپون شہد لیں اور اس میں کلونجی کے 1 دانہ یا 3 دانے یا 5 یا 7، اس سے زیادہ نہیں کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے، 3 یا 5 دانے ڈالیں اور اپنی لائف میں شامل کر لیں. پھر اسی طرح آب زمزم کا پانی، اس میں شفا ہے. زیتون کا تیل، سنن ترمذی میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بس بے شک یہ مبارک درخت سے ہے. حدیث نمبر 1851. یعنی یہ کھانے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور لگانے کے لیے بھی. کہیں پین ہے، ہلکا سا مساج کر لیں، کھا لیں، اپنے کھانے میں بھی ہم شامل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید سے علاج سب سے مؤثر ترین علاج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، بنی اسرائیل آیہ نمبر 82. اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. رقیہ شرعیہ، आप सब डेली सुना करें। और माशाल्लाह आप सबके पास फोन है, मैं ये आपको सेंड करूंगी। आप कोशिश करें कि डेली सुबह के वक्त प्ले कर लें या शाम के वक्त प्ले करें, लेकिन लाजमी सुने। आपको खुद भी आना चाहिए और मुसलसल सुनने से वो आपको याद हो जाएगा। आई थिंक 13 या 11 मिनट की ऑडियो है, आप उसको अपनी लाइफ में शामिल करें तो आपको शिफा मिलेगी। मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, इंशाल्लाह आपने लाजमी सुननी है। फिर इसी तरह दुआएं, आसीब, जादू और नजरे बद का इलाज, ये मुख्तलिफ कुर्रा की साउंड में भी मौजूद हैं। आप YouTube पे सर्च कर सकती हैं और बहुत से ऐसे बुकलेट्स भी आ चुके हैं दुआओं के कार्ड्स, जिनमें ये दुआएं हैं। इंसान वक्तन फवक्तन और कोशिश करे कि हर दिन एक दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर ज़रूर दम करता रहे। कुछ लोग खुद मशक्क़त नहीं झेलते और दूसरों को कहते रहते हैं कि हम पे दम करो। जब इंसान बीमार होता है तो अगर कोई दूसरा पैनाडोल ले तो उस पर कोई असर नहीं जाएगा। बीमारी के वक्त दवा खुद ली जाती है, इसलिए कोशिश करें कि आप खुद पढ़ें, आप खुद सुने। अक्सर जिन लोगों पर जादू होता है या उसका कुछ असर होता है, या इंशाल्लाह मैं अभी आगे चल के डिस्कस करूंगी, नजरे बद का जो शिकार होते हैं, तो वो तिलावत न सुन सकते हैं न खुद तिलावत कर सकते हैं। लेकिन सुने, पहली दफा थोड़ा से सुने, फिर थोड़ी ज्यादा करके सुने, उसका आप पे बहुत असर होगा। लेकिन खुद कोशिश करें। वो एक मुहावरा है ना कि अपने मरे बगैर तो जन्नत भी नहीं मिलती। तो खुद करें, खुद सुने। कोई दूसरा जितना पढ़ेगा उसका असर होगा, लेकिन वो बहुत स्लोली होगा। आप खुद करेंगे तो बहुत जल्दी असर होगा। तो खुद पढ़ना सीखें, खुद सुने। सुबह के वक्त आप सुने। आप अगर हाउस वाइफ हैं तो जब आप किचन में नाश्ता बना रही हो तो प्ले कर दें रुकए शरिया। आप स्टूडेंट्स हैं तो आप तैयार हो रहे हैं तो आप प्ले कर दें। आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में एक दफ़ा सुन लें, लेकिन इसका आपकी ज़ात पर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा असर होगा। और जिन लोगों के पास फ़ोन नहीं है, वो कैसेट की सूरत में भी अपने पास सेव कर सकते हैं, या नहीं तो दुआओं के कार्ड्स हैं वो किसी तरह परचेज कर लें। अगर कुछ भी नहीं तो वही नसाइन हर घर में मौजूद है, उसमें ये दुआएं मेंशन हैं। आप लोग प्लीज़ इनको अपनी लाइफ में शामिल करें। तो ये तो एक आयत थी, वमिन शर्रिन नफ्फासाती फिल उकद, जिसमें हम पनाह मांगते हैं किसकी, फूंकने वालियों की, यानी जादू से, जादू के शर से और जादू के नुकसान से। अब जो इसके बाद अगली आयत है, वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, और हासिद के शर से जब वो हसद करे। अब हम देखेंगे कि हसद क्या है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और इसका क्या इलाज है। जब हसद करने वाला हसद करता है तो उसकी नज़र लगती है, यानी नज़रे बद। तो आइए हम देखते हैं कि नज़रे बद क्या बरहक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से अक्सर लोग अल्लाह ताला के क़ज़ा व क़दर के बाद जो मरेंगे वो नज़र के सबब फ़ोत होंगे। और ये हदीस हसन है, सही जामे 1206 हदीस नंबर है। और फिर इसी तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अलाइनु तुदखिलु रजुल अल-क़ब्र वल-जमल अल-क़िदरा, कि नज़र आदमी को कब्र में दाखिल कर देती है और ऊंट को हंडिया में डाल देती है। और सही जामे में ये हदीस मेंशन है, हदीस नंबर है 4144। तो याद रखिएगा कि नज़र लगने की हकीकत है, नज़र बरहक है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अलाइनु हक़ुन वयहदुरु शैतानु वहसद इब्न आदम, नज़र लगना साबित है, इसमें शैतान हाजिर होता है और इब्न आदम का हसद करता है। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर है 9668। और शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि हसद एक मर्ज़ है जो नफसानी अमराज में से है। ये एक आम मर्ज़ है, इससे कम लोग ही छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और एक मशहूर मकोला है कि कोई जिस्म हसद से खाली नहीं, लेकिन कम ज़र्फ आदमी इसे जाहिर कर देता है और करीम आदमी इसे पोशीदा रखता है। हसन बसरी रहिमहुल्लाह से पूछा गया कि क्या मोमिन भी हसद करता है, तो आपने फरमाया यूसुफ के भाइयों को हसद ही ने तो हर चीज बुला दी थी, लेकिन ये हसद जब तक सीने में छुपा रहे इसका नुकसान नहीं, हाँ जब ये हाथ या जबान पर आ जाए तो ये नुकसान देह है। और बाज सल्फ का कौल है कि हसद पहला गुनाह है जिसके साथ आसमान में अल्लाह ताला की नाफरमानी की, यानी वहां इब्लीस ने आदम का हसद किया और ये पहला गुनाह है जमीन पर जिसके साथ अल्लाह की नाफरमानी की गई, यानी आदम के बेटे ने अपने भाई को हसद ही से कत्ल किया। इसी तरह सुनन की किताबों में आता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर तुमसे पहले लोगों की बीमारी सरायत करेगी, वो है हसद और बुख्स। बिलखसूस बुख्स तो मोंड देने वाली चीज है, ये बाल नहीं मोंडता, ये तो दीन को मोंड देता है। आपने हसद का नाम बीमारी रखा है। सुनन तिरमिजी की रिवायत है और हदीस नंबर है 2510। तो यहाँ से आई होप आपको पता चल गया होगा कि नजर लगना बरहक है। हम लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है, मैं अगेन वही चीज कहूंगी कि या हम बहुत अफराद पे जाते हैं या बहुत तफरीद पे। अफराद पे ये कि हम बात बात को नजर कह देंगे, या तफरीक पे ये कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, मुझे कौन नजर लगाएगा, मुझ में ऐसी क्या चीज है, या हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, इस पहलू से हम कभी सोचते ही नहीं है। तो अगेन याद रखिएगा कि अल्लाह के नबी इन सूरतों को कितना पढ़ा करते थे। अगर हसद और उसके शर से अल्लाह के नबी पनाह मांगते थे तो हम इस हकीकत को कैसे डिनाई कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला बार बार ये आयात मुझे और आपके सामने ला रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें पढ़नी चाहिए। हमारे इर्द गिर्द हासिदीन मौजूद हैं और आज शैतान का इतना गलबा है कि छोटी छोटी चीज़ों के बिना पर इंसान हसद करने लग जाता है। देखिए आप बच्चों को गौर करें, आजकल बच्चों के अंदर भी ये हसद का ये जो जज्बा है कितना आ गया है। पहले वक्तों में ये नहीं होता था, लेकिन अब छोटी छोटी चीजों के बिना पे बहन भाइयों में कितना आ गया है। तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की कि हम इस हकीकत को समझें, इसको एक्सेप्ट करें और फिर अमली इकदामात उठाएं। बहरहाल अगर हम देखें नजर लगने वालों की कितनी अकसाम हैं, तो याद रखिएगा दो अकसाम हैं। एक तो नजर लगाने वाला खबीसुन नफ्स होता है, जो ना तो अल्लाह की कज़ा व कदर पर ईमान लाता है और ना ही उसका ईमान कवी होता है, बल्कि ज़ाइफ़ुल ईमान होता है। उसके खुशी इसी चीज़ में होती है कि बस दूसरे से नेमत छिन जाए और ज़वाल आ जाए। ये ज़बानी वस्फ को अल्लाह ताला के ज़िक्र के बग़ैर और बग़ैर दुआए बरकत के छोड़ देता है। इसे बदरूहें पकड़ लेती हैं जो कि वहाँ हाजिर होती हैं, और इनकी ख्वाहिश ही मुसलमानों को अज़ियत देना है। उस वक्त ये नज़र अगर वहाँ बचाओ या हिफाजत ना हो, यानी जिसके बारे में ये कुछ सोचा गया, और अल्लाह की मशीयत ना हो, तो फिर ये तबाहकुन होती है। और फिर यही वो नज़र है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि नज़र आदमी को कब्र में दाखिल कर देती है और ऊंट को हंडिया में डाल देती है। अब याद रखिएगा कि नज़र लगाने वाला अच्छे नफ्स वाला भी होता है, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में होता है कि वो उसकी इंटेंशन गलत नहीं होती, लेकिन उसने इतनी जल्दी में वो बात की होती है कि वो अल्लाह का जिक्र करना भूल जाता है, लेकिन उसके मुंह से निकली हुई बात शैतान फौरन पकड़ लेते हैं और फिर नजर ज़दा के जिस्म और उसके ऑर्गन में अजियत रसानी के लिए या उसके दिल में तंगी और खौफ पैदा करने के लिए वो चीज़ उसके दिल तक आ जाती है, और ये नज़र सिर्फ बेकरार करती है और इसका इलाज भी बहुत आसान है। तो प्यारों की नज़र भी लग जाती है। ये बात याद रखिएगा कि हर इंसान अपने भाई को नुकसान पहुंचाने की ताकत से सिर्फ नहीं देखता, अच्छी नज़र भी लगती है। ये अक्सर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा नज़र एक माँ की लगती है। अलामा इब्ने हजर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि नज़र को जो पसंद हो उसे भी नज़र लग जाती है, यानी जो हमें पसंद है उसको भी हमारी नज़र लग जाती है, अगरचे हसद से ना भी हो। अगर नेक आदमी हो और मोहब्बत रखने वाला आदमी हो तब भी नज़र लग जाती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जिसे कोई चीज भली लगे उसके लिए जरूरी है कि फौरन जो उसे पसंद आया है साथ उसके लिए बरकत की दुआ करे। ये दुआ उसके लिए गोया दम हो जाएगा जिससे नुकसान से हिफाजत रहेगी। तो क्या करना चाहिए? दो तरह के लोग हैं ना, और हम इन दोनों में से एक में फॉल करते हैं। मसलन अगर हमारी इंटेंशन गलत नहीं है लेकिन किसी की चीज़ बहुत पसंद आती है और उसका इंसान तज़किरा करे तो फौरन कह दे माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। इस तरीके के खूबसूरत दुआया कलिमात कहने चाहिए, अल्लाहु यहफिज़ुकी। और सबसे आसान दुआ बारक अल्लाहु फीकुम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह। ऐसी जो अल्फाज होते हैं दुआया अल्फाज, इंसान उनको शामिल कर दे। मसलन आप माँ हैं, आप अपने बच्चे को देख रहे हैं, वो तैयार हुई, बहुत प्यारी लग रही, आप ये मत बोलें वो बहुत प्यारी लग रही है, आप बोलें माशा अल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, आप माशा अल्लाह बोलें। और हमारा तो एक और ट्रेंड चलता है कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो हम फौरन से थूकते हैं, इसकी क्या हकीकत है, ये तो बहुत प्यारी लग रही है, माशा अल्लाह, थू थू। नो, आप माशा अल्लाह बोलें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोलें। इसी तरह आपने अपने किसी बहुत फेवरेट इंसान को देखा, उसकी स्माइल पसंद आई या कुछ, तो आप फौरन से अगर सोच भी रहे हैं ना तो आप फौरन से माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, इस तरीके के छोटे छोटे कलिमात अदा करते हैं। क्योंकि आपकी इंटेंशन अगर गलत नहीं भी है, दुरुस्त है, आप बोलेंगे जल्दबाजी में लेकिन आपके अल्फाज उस पर गलत तरीके से असरअंदाज हो जाएंगे। अच्छा, अब नज़र सदा की क्या साइंस है, कैसे पता चलेगा कि नज़र लगी है? मसलन सर दर्द, चेहरे पर जर्दी का आना, पसीने की कसरत, इसी तरह पेशाब का ज़्यादा आना, जमाई ज़्यादा आना, नींद का कम या ज़्यादा आना, ख्वाहिशात का कमज़ोर हो जाना, हाथों और पाँव में रतूबत का होना, हरकत ना करना, दिल की हरकत बढ़ जाना, सख्त किस्म का गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पे गमज़दा होना, बग़ैर किसी रीज़न के रोने लग जाना, इसी तरह सीने में एक बोझ का महसूस होना यानी डिप्रेशन, कमर के नीचे और कंधों के दरमियान यानी दर्द होना, जो हमारे मसल्स हैं इनका पेन होना, रात नींद का चाट हो जाना, सोते सोते एकदम से जाग जाना और डरते रहना, तो ये सारे साइंस होते हैं। बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा साइन भी होता है और बाज़ दफ़ा सिर्फ एक साइन होता है। लेकिन याद रखिएगा कि कभी कभार ये साइंस गैर नज़र ज़दा में भी पाई जाती हैं या जिस्मानी बीमारी की वजह से भी ज़ाहिर हो जाती हैं। मसलन आपकी डाइट अच्छी नहीं है जिसकी वजह से आपका जो फेस है उसका कलर चेंज हो गया, तो इट डजेंट मीन कि आपको नज़र हुई है। या आप रात को खुद नहीं सोते, फ़ोन यूज़ करते रहते हैं या इधर उधर बातें करते रहते हैं और फिर आपके सर में पेन हो तो आप कहें मुझे नज़र हो गई है। नो, आप अपनी तरफ से हर चीज़ परफेक्ट कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद कुछ एक्स्ट्रा साइंस आ रहे हैं, तो वो फिर होगा साइन कि आपको नज़र लगी हुई है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब देखिए, हसद, हसद के कुछ टाइप्स होती हैं। एक अच्छा हसद भी होता है, और ये क्या है, यानी रश्क करना। इसका मतलब ये है कि एक आदमी दूसरे के शर्फ व फजल को अपने शर्फ व फजल पर पसंद तो नहीं करता मगर उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं भी इस अफजल आदमी की मानिंद हो जाऊं या इससे बेहतर हो जाऊं, और ये क़ुर्ब इलाही के कामों में रेस में शामिल है, ये हसद नहीं है। जैसा कि हज़रत अबू बकर से मुकाबले पर अमल करते हुए सैयदना उमर ने तमन्ना की थी कि उनके बराबर हो जाऊं या बढ़ जाऊं, जब कामयाब ना हुए तो उन्हें मुखातिब करके फरमाया कि मैं तुमसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सैयदना अबू बकर अपना सारा घर का माल उठाकर ले आए थे। तो नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ना, पहल करना, वो हसद में नहीं आता, याद रखिएगा। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला हसद इल्ला फी इस्नैन, हसद यानी रश्क दो आदमियों का किया जाए, एक वो जिसे अल्लाह ने कुरान की दौलत से नवाजा है और वो रात और दिन की घड़ियों में उसके साथ क़याम करता है, और दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल दिया है वो हक़ की हमायत में उसे रात और दिन की घड़ियों में खर्च करता है। सही बुखारी की हदीस है। तो ये हसद यानी ये रश्क खूबसूरत है। इसके अलावा हसद मुबाह, ये दुनिया के मामलात में है मगर ये दो शर्तों से जायज है। यानी जब साहिब शर्फ व फजल देखकर उसके शर्फ व फजल के हुसूल की आरजू करे तो बरकत की दुआ करे और जिक्र इलाही करे। मसलन आपने किसी की कोई चीज देखी, किसी का कोई बहुत खूबसूरत ड्रेस देखा, तो आपने जैसे ही देखा तो आपके दिल में ये विश हुई, आपके आपने चाहा कि ऐसा ड्रेस मुझे भी मिले, लेकिन आपने उसको बरकत की दुआ दी कि बारक अल्लाह फीकुम माशा अल्लाह, और साथ शर्त ये भी है कि उसके जवाल नेमत की तमन्ना ना करें। यानी अब ऐसा ना कि आप कहें इसको क्यों मिला है, ये तो मुझे मिलना चाहिए था, ये तो मेरे पास होना चाहिए था। नो, आप विश कर सकते हैं लेकिन दो चीज़ें हों, एक करने का काम हो और एक ना करने का काम हो। करने का काम क्या हो कि आप फौरन से उसके लिए दुआ करें बरकत की, और ना करने का काम ये हो कि आप उसके जवाल नेमत की तमन्ना ना करें, ठीक है। और हसद मकरू कौन सा है, ये वो है कि अपने भाई का जिक्र खैर या उसका वस्फ बगैर बरकत के जिक्र करता रहे, ये हसद मकरू है। मसलन आपकी नेगेटिव इंटेंशन नहीं है लेकिन आप किसी की तारीफ इस तरह करें कि साथ बरकत की दुआ ना करें, क्योंकि ऐसा करने वाला अपने भाई को अजियत पहुंचाने में शैतान का दरवाज़ा खोलता है। अगरचे भाई से जवाल नेमत की तमन्ना ना भी रखता हो, चूँकि उसने जिक्र इलाही नहीं किया इस वजह से ये मज़मूम ठहरा है। असल बात तो यही है ना कि मुसलमान तमाम औकात में अल्लाह ताला का जिक्र करता रहे। अल्लाह ताला भी उन लोगों की तारीफ करते हैं जो खड़े बैठे और अपने पहलुओं को चेंज करते हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं, ठीक है। मसलन आपके कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, आपको बहुत पसंद है, आप घर में उसकी तारीफों की तारीफें किए जा रहे हैं, लेकिन आप अल्लाह का जिक्र बीच में ना करें, माशाल्लाह ना कहें। इसलिए माशाल्लाह को अपनी लाइफ में बहुत शामिल कर दें, माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत प्यारी है, माशाल्लाह मेरी फ्रेंड बहुत खूबसूरत है, तो इस तरीके के कलिमात को अपनी लाइफ में शामिल करें। इसी तरह हसद एक होता है हराम। सबसे पहला कौन सा था, अच्छा हसद, उसको रश्क करना कहते हैं। दूसरा है हसद मुबाह, तीसरा है हसद मकरू, और चौथा है हसद हराम। और ये वो है जिसमें इंसान एक तो बरकत की दुआ भी ना करे और दूसरा जवाल नेमत की तमन्ना करे, अलायाज बिल्ला। और ये यहूदियों के हसद वाला हसद है और ये बहुत काबिल मुजम्मत है, इससे बचना चाहिए और अपने दिलों को टटोलना चाहिए। देखें इंसान को ऐसी फीलिंग्स आती हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आज के इस दौर में ना आए। किसी को अच्छा बोलते इंसान देखता है, किसी का अच्छा ड्रेस देखता है, अच्छा इल्म देखता है, अच्छी चीज़ें देखता है, तो उसको ख्वाहिश होती है कि ये चीज़ मेरे पास भी हो। लेकिन इसके साथ कुछ और चीज़ मिक्स ना करें, ये मत सोचें कि ये नेमत उसको क्यों मिली है, मुझे मिलनी चाहिए थी। देखिए अल्लाह से उसका फजल मांगा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलक, ए अल्लाह मैं आपसे आपके फजल का सवाल करती हूँ। जब आप ये कलिमात पढ़ लेंगे ना तो इंशाअल्लाह वो भी बचा रहेगा और अल्लाह ताला वो नेमत आपको भी देंगे, वो रब आपका भी है। इसलिए हसद को कभी अपने दिल में ना आने दें, किसी से भी हसद मत करें, क्योंकि जिस रब ने उसको वो नेमत दी है क्या वो आपका रब नहीं है, क्या वो इस चीज पर कादिर नहीं है कि वो आपको दे। आप वैसे बने तो अल्लाह ताला आपको भी देंगे, वो आमाल करें कि फिर आपको वो नेमत मिले, ना कि वो आमाल करने लग जाए जिससे इंसान मजीद अल्लाह से दूर होकर रह जाए, और बजाय इसके कि उसको वो नेमत मिले इंसान को मजीद आजमाइशें और मजीद अजाब उस पर मुसल्लत हो। तो इसलिए गौर किया करें कोई भी अमल करने से पहले, कोई भी जज्बात को दिल में लाने से पहले, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों उससे हसद कर रही हूँ, उसको भी जो नेमत मिली है वो अल्लाह ने दी है, उसने खुद नहीं ली। तबारक अल्लज़ी बियदिही अल-मुल्क वहुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर, क्यों हर रात ये तिलावत करते हैं, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, जिस रब ने उसे दिया है वो मेरा भी रब है, मुझे भी देगा, मैं उससे मांगू और हसद क्यों करूं, कौन सी उसे हमेशा के लिए मिली है नेमत, उससे भी छिन जाएगी। और अपना असल हम और गम ना آخرت کو بنائیں، اپنے مقصد حیات آخرت کو رکھیں۔ جب دنیا ہمارا ہم اور غم ہوتی ہے تو اس طریقے کی برائیاں ہمارے دل میں آنے لگتی ہیں۔ اب ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ جادو اور نظر لگنے کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیونکہ دونوں آیات ساتھ ساتھ آئی ہیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ دیکھیں، جادوگر اور نظر لگانے والے اثر میں مشترک ہیں، لیکن ان کا طریقہ اذیت مختلف ہوتا ہے، مگر مقصد دونوں کا تکلیف پہنچانا ہے۔ جادوگر بالوں یا ناخنوں میں گھیرے باندھتا ہے اور پھونک مار کر جادو کرتا ہے، جس کے ساتھ شیطان کا رابطہ ہوتا ہے اور جادو زدہ کو وہ اذیت دیتا ہے۔ جبکہ حاسد اور نظر لگانے والا جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور جو وصف اسے اچھا لگتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے، تو اس سے بھی شیطان کا رابطہ ہو جاتا ہے اور وہ نظر زدہ کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب نظر بد سے بچنے کے لیے کون سے احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ وہی جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہیں کہ مصیبت کے آنے سے پہلے ہی بچانے والا عمل۔ انسان پہلے سے ہی حفاظتی اقدامات اپنائے تاکہ نہ وہ نظر بد کا شکار ہو نہ وہ جادو کا شکار ہو۔ میں نے ایک جگہ بہت پہلے کوٹیشن پڑھی تھی، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ جس پہ نظر لگی ہو، یعنی جس کو نظر لگی ہو، وہ دوسروں کو نہ کوسے، خود کو کوسے، کیونکہ وہ کیوں ایک دن بھی غافل ہوا اللہ کے ذکر سے کہ نظر نے اس پہ اپنا اثر چھوڑا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظك۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث ملتی ہے، حدیث نمبر 2516، کہ تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط کریں۔ جب عرش والے کے ساتھ رابطے مضبوط ہوں تو فرش والے کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ فرائض کو پورا کریں، ذکر و اذکار، صبح شام کے اذکار لازمی کریں۔ یہ آخری قل اب آپ پڑھ چکے ہیں، اب ان کو اپنی لائف میں شامل کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا اب صبح شام یہ پڑھیں، اب صبح شام اللہ سے کہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صبح شام اس دعا کی آپ ریپیٹیشن کریں، اور اس کے بعد آپ کسی کی نظر کا شکار ہوں؟ ناٹ ایٹ آل۔ اور پھر اسی طرح قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، پھر صدقہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، داو مرضاکم بالصدقہ۔ صحیح جامع میں حدیث ملتی ہے، حدیث نمبر 2358، کہ اپنے بیماروں کا علاج بذریعہ صدقہ کرو، اور صدقہ راحت میں کریں تاکہ وہ راحت آپ سے چھین نہ جائے، عافیت میں کریں تاکہ وہ بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں دشمنوں کی شر سے، حاسدین کی شر سے، جادو کرنے والوں کی شر سے، شیطان کی شر سے، اپنے نفس کی شر سے۔ تو یہ تھے سورہ ناس اور سورہ فلق۔ ایکچولی یہ ٹاپک بہت وسیع ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس پہ بہت ڈیٹیل سے ہم بات کریں، اسپیشلی نظر بد پہ اور جادو پہ، لیکن چونکہ وقت کم ہے، ہم نے پورا قرآنی پورا آخری پارا کور کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کبھی وقت ملے تو کائنڈلی آپ ضرور پڑھیں۔ اور بس خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں تاکہ یہ کوئی بھی غلط چیز آپ پہ اثر انداز نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے رکھے۔ ان صورتوں کو اپنے لائف میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اور آج کی جو بہت خوبصورت دعا ہے وہ کون سی ہے؟ سنن ابن ماجہ میں یہ دعا ہمیں ملتی ہے، شفا کی دعا۔ میں پڑھتی ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر۔ بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی، اس شر سے جو میں پاتی ہوں اور جس سے میں ڈرتی ہوں۔ أستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. تقبل الله منا ومنكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.